मंथन।
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में भारत की तीव्र प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
आज हम चर्चा करेंगे रोबोटिक सर्जिकल केयर क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर ऑफ सर्जरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने पिछले 13 महीनों में लगभग 1000 रोबोटिक सर्जरी की है, जो एक इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। रोबोटिक सर्जरी के बारे में एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर सुनील चुंबर ने बताया।
मैं सुनील चुंबर हूं। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में सर्जरी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं। आज हम पूरे देश को बता रहे हैं कि हम लोगों ने पिछले 13 महीने में 1000 रोबोटिक ऑपरेशंस किए हैं। ये एक तरह का माइलस्टोन है हमारे सर्जरी ब्लॉक के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए और हमारे देश के लिए भी। और जैसा कि हम ढूंढ रहे थे, शायद किसी और विश्व में भी किसी सेंटर में इतने ऑपरेशन नहीं हुए होंगे। और ये सब इसलिए हो पाया कि हमारे 25 फैकल्टी मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व थे और सारी नर्सेस और बाकी सारी स्टाफ के कारण हम ये काम जो है कर पाए हैं।
डॉक्टर साहब, रोबोटिक सर्जरी को मोटे तौर पे क्या है और क्या समझा जाए, एक सरल शब्दों में अगर आप हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बता पाए।
रोबोटिक सर्जरी बेसिकली इसमें हम एक रोबोट का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट की सर्जरी करने के लिए, और इसमें जो सर्जन है वो एक रोबोटिक कंसोल पे बैठते हैं जो कि पेशेंट के टेबल से थोड़ा सा दूर होता है, और जो रोबोटिक आर्म्स होती हैं उनके जरिए इंस्ट्रूमेंट्स को पेशेंट के शरीर में डाला जाता है। जैसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जब हम करते हैं तो हम पेशेंट के बेड साइड पे होते हैं और छोटे छोटे होल्स के जरिए हम छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को डालते हैं। रोबोटिक सर्जरी में जो रोबोटिक मशीन है उसके अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि पेशेंट के शरीर के अंदर उनको पोर्ट्स के जरिए हम डालते हैं, और फिर कंसोल पे बैठ के सर्जन जो है वो उस कंसोल में उसका 3D वीडियो देख के तो रोबोटिक सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो विजन बहुत अच्छा होता है, इसमें 3D विजन होता है। दूसरा ये है कि जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें कि स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इसमें रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स की एक स्पेशल क्वालिटी है कि उसकी मूवमेंट अंदर जो है वो हाथ के मूवमेंट के जैसे हो जाती है, तो उसको हर तरफ हम रोटेट कर सकते हैं, अलग अलग अप डाउन लेफ्ट राइट रोटेट भी कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को। तो एक वो जो मूवमेंट है वो कॉपी करती है जैसे कि हम नॉर्मल ओपन सर्जरी में जैसे अपने हाथ को यूज करते हैं। तीसरा ये उसमें एडवांटेज होता है कि जो थोड़े ट्रेमर्स होते हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं। सर्जरी तो बाकायदा वही रहती है जो कि फॉर एग्जांपल आपको गॉलब्लैडर का ऑपरेशन करना है तो आप वही करेंगे जो आप ओपन सर्जरी में करेंगे या लैप्रोस्कोपी द्वारा करेंगे। सिर्फ हमारा क्वालिटी ऑफ विजन अच्छा हो जाता है और हमें इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करने में काफी आसानी हो जाती है। तो ये है रोबोटिक सर्जरी का जनरल प्रिंसिपल।
तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि रोबोटिक सर्जरी से काम करना या सर्जरी करना थोड़ा आसान हो जाता है, तो क्या इसमें समय भी कम लगता है और क्या इससे जो उपचार होता है यानी जो हमारी सर्जरी होती है, शल्य चिकित्सा होती है, उसमें जो सक्सेस के चांसेस हैं वो और बेहतर बनते हैं?
शुरुआत में तो रोबोटिक सर्जरी में अगर आप स्टडीज को देखेंगे तो समय इनफैक्ट ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें आपको रोबोटिक मशीन को ला के पेशेंट के ऊपर डॉक करना पड़ता है और वो एक एडिशनल टाइम पॉइंट हो जाता है। और दूसरा ये भी हमें देखना कि हमारा कंपैरिजन ओपन सर्जरी के साथ है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ है। रोबोटिक सर्जरी एक किस्म से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है, क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी छोटे छोटे होल किए जाते हैं, ओपन में तो आप बड़े इंसिशंस देते हैं तो उसको खोलना और बंद करने का टाइम ज्यादा होता है। बट लैप्रोस्कोपिक के कंपैरिजन में शुरुआत में खासतौर पे जब आप शुरू शुरू में स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा समय ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि रोबोट को ला के पेशेंट के ऊपर डॉक करना उसमें थोड़ा समय लग जाता है, और फिर एट द एंड ऑफ द सर्जरी आपको उसको ऑन डॉक करके हटाना भी है। मगर विद एक्सपीरियंस लार्जली वो समय को काफी कम किया जा सकता है, और लार्जली ये देखा गया है कि विद एक्सपीरियंस लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी में समय सिमिलर हो जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि पेशेंट स्टैंड पॉइंट फ्रॉम द सर्जन स्टैंड पॉइंट इट इज मच मोर कंफर्टेबल, ये ज्यादा एक कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है, खासतौर पे कुछ ऑपरेशंस में जहां पे कि स्पेसेस बहुत नैरो होती हैं, जैसे पेल्विस हो गया, उसका एक एग्जांपल जनरल सर्जरी में आप देख सकते हैं, जो कोलोरेक्टल सर्जरी हम करते हैं, या हाइटस है जो डायफ्राम के अराउंड जो हम सर्जरी करते हैं, ये एरियाज में इसका, और या थोरैक्स चेस्ट के अंदर हम लोग कुछ सर्जरीज करते हैं, थायमेक्टमीज या लोबेक्टमीज या इसोफेजेक्टमीज, तो कुछ सर्जरीज में इसमें सर्जन को काफी एडवांटेज होता है क्योंकि उसकी अर्गोनॉमिक्स बेटर होती है, उसको थोड़ा सा टायर्डनेस कम हो जाता है, फटीग थोड़ा सा कम होता है क्योंकि आप एक जगह बैठ के और उस तरह से काम कर रहे होते हैं, और नेचुरल बात है कि भाई यदि एक अच्छे एनवायरनमेंट में सर्जरी की जाएगी तो उसका एडवांटेज थोड़ा पेशेंट को भी नेचुरली होता ही है। बाकी पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा भी देखा गया कि जो पेन का कंपोनेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है और रिकवरी वगैरह थोड़ी फास्ट होती है रोबोटिक सर्जरी।
अब अगर बात करें कि रोबोटिक सर्जरी या ओपन सर्जरी जो कि पारंपरिक सर्जरी है, दोनों में जो मूल अंतर है और इसके साथ साथ दोनों की जो लागत है, कॉस्टिंग है, उन दोनों में कितना फर्क आप समझते हैं?
ओपन सर्जरी का जहां तक सवाल है वो उसका एक अपना रोल है, बेसिक तो वहीं से सारी शुरुआत हुई थी ओपन सर्जरी से ही, और वो आज भी वैलिड है, काफी सारी सर्जरीज हैं जो आज की तारीख में भी ओपन द्वारा ही अच्छे से की जा सकती हैं, मगर काफी सारी सर्जरीज हैं जहां पे कि जो स्पेस, जो आपको एक छोटे से ऑर्गन को अप्रोच करना है मगर बहुत बड़ा कट देना पड़ता है बिकॉज ऑफ दी, उसको एक्सेस करने के लिए मुश्किल होता है, तो उन चीजों में काफी रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी फायदा होता है। और रोबोटिक सर्जरी का जो खास तौर पे जैसे एब्डोमिनल वॉल हर्नियाज हैं, जहां पे कि आपको मतलब नॉर्मली आप सर्जरी करते हैं तो नीचे देख के करते हैं, एब्डोमिनल वॉल में जब आप सर्जरी करना है तो कुछ एक एरियाज हैं जहां पे कि रोबोटिक सर्जरी काफी एडवांटेजियस है ओपन सर्जरी के बनस्पत। रहा सवाल लागत का, तो लागत तो रोबोटिक सर्जरी की आज की तारीख में तो डेफिनेटली ज्यादा होती है अगर आप कॉस्ट ऑफ मशीन और जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट देखें, क्योंकि इनके जो एक्सेसरीज आती हैं उनकी एक टाइम लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल एक रोबोटिक सीजर है या रोबोटिक जो डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो 10 बार यूजेज के बाद वो खत्म हो जाते हैं, मतलब उसको दोबारा नहीं आप यूज कर सकते हैं 10 यूजेज के बाद, तो उनको फिर एक ऑनगोइंग उसका कॉस्ट भी रहता है उसको केयर करने का, जबकि ओपन सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो काफी काफी साल चल जाते हैं। तो आज की तारीख में रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली ज्यादा कॉस्टली है, बाकी अदरवाइज ओपन सर्जरी के मुकाबले में आपको पेशेंट को एडवांटेज तो है क्योंकि ये मिनिमल इन्वेसिव है, तो उससे रिकवरी, पेन और रिटर्न टू वर्क, ये सब एक्टिविटीज जरा जल्दी हो जाती है।
डॉक्टर साहब, जो ओपन सर्जरी हम करते हैं तो नॉर्मली जैसा भी आपने बताया कि ओपन सर्जरी में डॉक्टर सीधे सीधे इन्वॉल्व होता है, क्या रोबोटिक सर्जरी में ऐसे भी कुछ प्रावधान हैं या ऐसी भी सुविधाएं हैं कि रिमोटली भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है? जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई विशेषज्ञ डॉक्टर दूर है तो क्या वो भी इस तरीके से रिमोटली इनको मॉनिटर कर सकता है या ऑपरेट कर सकता है?
देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ के ट्रांसकॉन्टिनेंटल सर्जरी भी लोगों ने किया है, बट एक्चुअली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल सर्जरी रोबोटिक द्वारा करना संभव है, बट ये अभी उतनी पॉपुलर नहीं है। अदरवाइज इसमें जो ऑपरेटिंग सर्जन होता है वो रोबोट पेशेंट से बहुत दूर नहीं होता है और एक पूरी टीम होती है जो कि पेशेंट के साथ रहती है, क्योंकि जो बेड साइड असिस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, जो कि पेशेंट के बेड साइड पे होता है और वो इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे मान लीजिए सक्शन है, इरिगेशन है, इस तरह की चीजें जो सर्जन नहीं कंट्रोल कर सकता वो बेड साइड असिस्टेंस करता है।
डॉक्टर साहब, रोबोटिक सर्जरी की यहाँ पे ट्रेनिंग की सुविधाएं एम्स में कितनी अभी तक लगाई गई हैं या इसका कितना प्रसार किया जा रहा है?
तो देखिए ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो किस्म की ट्रेनिंग है, जो सही ट्रेनिंग है वो तो जो हमारे अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं जो हमारे साथ दिन रात काम करते हैं, वो उनको एक डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है, वो हमें सर्जरीज में असिस्ट करते हैं, बेड साइड असिस्टेंस भी देते हैं, फिर बीच बीच में जैसे जैसे उनकी कॉम्पिटेंस बढ़ती है तो उनको कुछ प्रोसीजर्स करने की भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। रहा सवाल ट्रेनिंग का फ्रॉम द पर्पस ऑफ ए नेशनल स्टैंड पॉइंट, तो हमारे यहाँ दो रोबोट्स हैं जो कि हमारी सेट फैसिलिटी में लगे हुए हैं और उन के ऊपर हम सिमुलेशन ट्रेनिंग, फिर ड्राई लैब ट्रेनिंग और फिर वेट लैब इन द सेंस कैडावरिक सर्जरीज वगैरह हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वहाँ डेलीगेट्स आते हैं देश के हर कोने से और वहाँ पे वो उसका डायरेक्ट एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो रोबोटिक मशीन्स के अंदर ही कुछ इनबिल्ट प्रोग्राम है जो कि सिमुलेशन होती हैं, जिससे कि जो भी कोई बाहर से रेजिडेंट्स प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स आते हैं या वहां की इंस्टीट्यूशंस की फैकल्टी आती है, तो वो वहां बैठ के सिमुलेशन पे वो प्रोसीजर्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मूवमेंट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज ए नेक्स्ट स्टेप फिर हम लोग एक डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं वहां पे। फॉर एग्जाम्पल कैडेवरिक ट्रेनिंग के तहत हम लोग उनको एक कैडेवर में डायरेक्ट सर्जरीज करके दिखाते हैं, चाहे वो हर्निया सर्जरी है या गॉलब्लैडर या फिर फंडोप्लिकेशन वगैरह, इस तरह की सर्जरी हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और उनको वहां हैंड्स ऑन करने का मौका भी मिलता है, ताकि वो सीधे सीधे पेशेंट पे ना जाके एक काइंड ऑफ पहले एक्सपीरियंस हो जाता है मशीन को हैंडल करने का। तो ये एक यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है हमारी सेफ फैसिलिटी में।
जी, भारत में एम्स के अलावा और भी सरकारी क्षेत्र के अस्पताल हैं जहाँ पे इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं रोबोटिक सर्जरी की और साथ ही साथ रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग की?
एम्स दिल्ली के अलावा मैं एम्स जोधपुर, एम्स ऋषिकेश का तो मुझे नॉलेज है कि यहाँ पे ये है डेफिनेटली। पीजीआई चंडीगढ़ में भी रोबोटिक अवेलेबल है, यूरोलॉजी विभाग में इसका वहाँ पे ज्यादा यूटिलाइजेशन है। इनफैक्ट हमारे यहाँ भी जब आया था तो सबसे पहले यूरोलॉजी विभाग में ही इसका यूटिलाइजेशन हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे जनरल सर्जरी में। जैसे मैं पर्सनल लेवल पे 2011 से ही जनरल सर्जिकल प्रोसीजर्स हम कर रहे हैं और पिछले साल हमारे डिपार्टमेंट ने भी ये एक्वायर किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के सब फैकल्टी इसमें इन्वॉल्व हैं। और बाकी जिपमर पांडिचेरी में भी रोबोटिक अवेलेबल है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज का जहां तक संबंध है रोबोटिक के विषय में, जो मेरी जानकारी है, एम्स दिल्ली वाज द फर्स्ट वन यहां पे कि ये मेट्रोनिक्स और उसके बाद ये दा विंची के जो ट्रेनिंग रोबोट्स हैं वो आए हैं। इसके अलावा और कहीं इनकी उपलब्धि है उसकी मुझे बहुत जानकारी नहीं है, मगर अब जैसे शिमला मेडिकल कॉलेज वगैरह में भी ये रोबोटिक्स वगैरह का मतलब स्टार्ट हो गया है, क्योंकि वहां भी हमारे ही ट्रेंड सर्जन जैसे जाते हैं तो वो लोग अब कर रहे हैं वहां पे थोड़े थोड़े प्रोसीजर्स। ट्रेनिंग फैसिलिटी अभी मेरे विचार में सबसे ज्यादा यहीं पे अवेलेबल है।
डॉक्टर साहब, एम्स जैसा एक प्रतिष्ठित चिकित्सक संस्थान है जहां पे ट्रेनिंग भी होती है और इस तरह की बड़ी मात्रा में सर्जरी भी होती है, जहां दूर दूर से जो मरीज आते हैं और वो विश्वास लेकर आते हैं कि यहां पे उनका पूरी तरह इलाज होगा, तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि रोबोटिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी के आने से, रोबोट्स के आने से हम चिकित्सा के क्षेत्र में हमको कितनी नई नई उपलब्धियां हासिल हुई और हम कितना आसान कर पा रहे हैं सर्जरी के बारे में अगर खासतौर पर बात की जाए?
देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी है जब शुरू में आती है वो एक्सपेंसिव होती है, और एम्स में हमें एडवांटेज है कि मोस्टली जो है बीइंग ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वी हैव अच्छी फंडिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे गरीब इंसान भी जो आते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी एक्सेसरीज वगैरह की कॉस्ट बहुत होती है, तो प्राइवेट सेक्टर में कोई भी रोबोटिक प्रोसीजर है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। यहाँ पे हम लोग एक कॉमन जो व्यक्ति है उसको भी ये सुविधाएं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और आने वाले समय में रोबोटिक सर्जरी का जो रोल है वो बढ़ेगा। और एक चीज अगर आप प्योरली एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखना चाहें कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के कंपैरिजन में जो स्टडीज आई हैं, नेशनल इंटरनेशनल या ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में स्टडीज आई हैं, उनमें आप क्या पैरामीटर देख रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि रोबोटिक सर्जरी से पेशेंट को कितना एडवांटेज हो रहा है। कुछ चीजों में तो डेफिनेट एडवांटेज है, कॉस्मेटिक एडवांटेज है या अर्ली रिकवरी का एडवांटेज है, या बट जैसे कैंसर सर्जरी वगैरह के बारे में भी अगर आप देखें तो कुछ स्टडीज आ रही हैं जिनसे ये आइडिया लग रहा है कि ओपन सर्जरी के बनिस्पत थोड़ा एडेड एडवांटेज और भी पेशेंट्स को हो सकता है। आने वाले समय में आई थिंक जैसे जैसे और इस पे प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च होगी तो इन सवालों का जवाब और बेहतर तरीके से मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में भारत की तीव्र प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
मंथन।